हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आरव भले ही सबके सामने यही जताए उसे अपनी और आरव की शादी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच तो ये था उसे आयु अच्छी लगने लगी थी। आज तक आरव ने माहिरा के लिए कोई ड्रेस डिज़ाइन नहीं थी, जबकि आयु के मामले में ऐसा नहीं था। आरव ने आयु को शॉपिंग तक नहीं करने दी और खुद उसके लिए कैजुअल्स डिज़ाइन कर रहा था। आरव ने पूरी रात जागकर आयु के लिए ड्रेस डिज़ाइन की थी। आरव ने एक नज़र उन सबको देखा। 7 कैजुअल्स और 2 नाइटवेयर काफ़ी होंगे, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा दिन वो यहाँ पर रुकेगी। बस अब शाम तक ये रेडी हो जाए तो आयु को मेरे कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे। युवानी को बोलता हूँ कि आज के आज ये ड्रेसेस रेडी करवा दे। आरव उन्हें तरह संतुष्ट था। हर बार की तरह आरव ने बिना टाइम की परवाह किए आयु को कॉल किया। उस वक्त सुबह के लगभग 5 बज रहे थे। युवानी ने अधखुली आंखों से कॉल रिसीव किया। क्या बोली आरव सर, क्या फिर से आयु मैम को कॉल करके उन्हें कल ऑफिस जाने के लिए बोलना है? और उसे कॉल करने के लिए मैं तुम्हारा सहारा क्यों लूंगा? आरव ने आईज रोल करके कहा। युवानी ने मुंह बनाया और उन्नींदी आवाज में कहा, लेकिन आपने पिछली बार मेरे जरिए ही कहा था। खैर छोड़िए, बताइए किस लिए कॉल किया है? मैं तुम्हें कुछ ड्रेसेस के डिज़ाइंस मेल करता हूँ, आज के आज ही वो ड्रेसेस रेडी होकर आ जानी चाहिए, आरव बोला। सर इसके लिए तो आप मुझे ऑफिस में भी बोल सकते थे ना, सुबह के 5 बजे कॉल करने की क्या ज़रूरत थी? युवानी ने झुंझलाकर कहा। हाँ ये भी है, लेकिन मुझे ये ड्रेसेस जल्द से जल्द रेडी चाहिए, तब मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, मैं तुम्हें डिज़ाइंस मेल कर देता हूँ, हो सकता है कि मुझे आज ऑफिस आने में थोड़ी देर हो जाए। तुम जाते ही सबसे पहले वो डिज़ाइन फैक्ट्री में वर्कर्स के पास पहुँचाओगी, ताकि वो जल्दी से जल्दी उसे तैयार कर पाए। मुझे शाम को 6 बजे तक सब रेडी चाहिए, आरव ने सख्त लहजे में कहा। वो आयु के नॉर्मल से कपड़ों के लिए कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो रहा था। इससे पहले कि आरव कॉल कैट करता, युवानी जल्दी से बोली, सर आप आज लेट नहीं आ सकते हैं, कल शाम को ओबरॉयज़ की तरफ से मीटिंग का मेल आया था, आज सुबह 11 बजे ओबरॉयज़ डिज़ायर्स में मीटिंग के लिए आ रहे हैं। ओके, मैं 11 बजे से पहले ऑफिस पहुँचाऊँगा, आरव ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया था। आरव के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। पिछली बार आयु और ओबरॉय फैमिली के बीच गलतफहमी और झगड़ा उसकी वजह से ही हुआ था। ओह, तो अब ससुराल वाले डिज़ायर्स आ रहे हैं, तब तो मिसेस खुराना का ऑफिस जाना बनता है, आरव खुद से बोला। उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो ही जानता था। एक बात साफ थी, आज डिज़ायर्स में ओबरॉय फैमिली और आयु के बीच एक और टकराव होने वाला था, वो भी आरव की वजह से। आरव वहीं ऊपर ही सो गया था। अगली सुबह आयु जल्दी उठकर तैयार हो गई थी। आज उसे आरव के कपड़े नहीं पहनने पड़े, क्योंकि उसके पास एक ड्रेस पहले से थी। आयु जब कमरे से बाहर आई तो घर में बिल्कुल सन्नाटा था, यहाँ की आरव के कमरे का दरवाज़ा भी खुला था। आयु ने आरव को घर के पूरे निचले हिस्से में ढूंढ लिया, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। आयु ने परेशान स्वर में कहा, आरव कहाँ चला गया होगा? मॉर्निंग वॉक गया होगा क्या? पर उसके स्लिपर्स यहीं रखे हैं, रूम में देखकर लगा नहीं वो रात को वहाँ सोया होगा क्या? आयु ने ऊपर की तरफ देखा, ऊपर और भी फ्लोर थे, पर आयु ने बिना आरव के इजाज़त के ऊपर जाना सही नहीं समझा। उसने तुरंत आरव को कॉल किया। आरव ने बिना आंखें खोले कॉल रिसीव किया और चिढ़कर बोला, बदला ले रही तुम मुझसे युवानी, मैंने तुम्हें जगाया तो तुम भी मेरी नींद खराब करने पर उतर आई। तुम क्या सुबह सुबह पीकर बैठे हो? मैं युवानी नहीं आयु बोल रही हूँ, कहाँ हो तुम? आयु ने तुरंत पूछा। आयु की आवाज़ सुनकर आरव जल्दी से उठकर बैठ गया और उसकी नींद भी टूट गई थी। आरव जल्दी से बोला, ओ मुझे लगा वो कॉल ने फ़ोन किया होगा। युवानी तुम्हें क्यों फ़ोन करेगी, वो भी इतनी सुबह? आयु ने आंखें छोटी करके पूछा, क्योंकि युवानी के पर्सनल असिस्टेंट की ड्यूटी में ये भी आता है कि वो सुबह सुबह मुझे कॉल करके जगाएगी, आरव ने उसे परेशान करने के लिए कहा। आयु ने सिर हिलाया और बोली, तुम सच में अजीब हो, वैसे तुम सो कहाँ रहे हो? मैंने तो तुम्हें पूरे घर में ढूंढ लिया पर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। दादी के घर पर हो क्या? हो सकता है तुम्हें तुम्हारी माही बेबी की याद आ गई हो और तुम उससे मिलने रात को चले गए हो। सुबह सुबह उसका नाम लेकर मेरा मूड खराब मत करो, मैं 3rd फ्लोर के हॉल में हूँ, वहीं पर आ जाओ, लेफ्ट साइड हॉल का दरवाज़ा है, आरव ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया था। आयु के लिए ये बात छोटी थी और ज़्यादा मायने भी नहीं रखती थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी आरव ने उसे जगह पर आज तक किसी को नहीं आने दिया था। जैसे ही आयु ऊपर गई वो उसे एरिया को देखकर हैरान रह गई। एक डिज़ाइनर होने के नाते वो समझ सकती थी कि किसी भी डिज़ाइनर के लिए इस तरह प्राइवेट स्पेस कितना ज़रूरी होता था। कोई भी क्रिएटिव काम करने के लिए शांत जगह और दिमाग की ज़रूरत होती थी। आरव के घर का वो एरिया उसी हिसाब से सेट किया गया था। आयु ने आरव की तरफ बढ़ते हुए कहा, इट्स लवली, तुम्हें नहीं पता मेरी हमेशा से यही इच्छा थी कि मेरा खुद का घर हो और उसमें एक छोटा सा ऑफिस जिसमें मैं अपने डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सारे काम कर सकूं। तुमने ये जगह मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि यहाँ हर किसी को आने की इजाज़त नहीं है, ऊपर से तुम पहली बार मेरे घर पर रहने के लिए आई हो, ऐसा तो है नहीं कि आते ही तुम्हें सीधा यहाँ ले आता। तुम्हें पता है, जब मैं घर पर होता हूँ तो मेरा आधे से ज्यादा वक्त इसी एरिया में बीतता है। मैंने ख्वाब को यहीं पर डिजाइन किया था, इस हिस्से का नाम मैंने ख्वाब रखा है। आरव बोला, काफी क्रिएटिव हो, घर के ऑफिस का नाम ख्वाब और अपनी कंपनी को डिजायर्स कहकर बुलाते हो। अगर तुम यहाँ बैठकर सिर्फ डिजाइन्स ही बनाते हो तो बताओ कल रात को क्या बनाया था, आयु ने पूछा। तुम्हारे लिए ड्रेसेस, जो कि तुम्हें आज शाम तक मिल जाएगी, आरव ने कंधे उचकाकर कहा। तुम सच में पागल हो, इन सब की कोई जरूरत नहीं थी, आयु ने जवाब दिया। वो हैरान थी क्योंकि आज से पहले उसके लिए इतना सब किसी ने नहीं किया था। ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी, मेरी वाइफ हो तुम, चाहे कुछ वक्त के लिए क्यों ना हो, मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूंगा, आरव ने आयु की आंखों में देखते हुए कहा। आयु उसकी आंखों में नहीं देखना चाहती थी ताकि सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो जाए। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, उप्स, तो खड़ूस खुराना रोमांटिक बातें भी करता है। लगता है तुम्हें माहिरा की याद आ रही है, तभी तुम्हारे अंदर का रोमांस निकलकर बाहर जा रहा है। बार बार उसके बारे में बातें करना बंद करो, तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं उससे प्यार नहीं करता, आरव ने चिड़ान भरे स्वर में कहा। हाँ प्यार नहीं करते, लेकिन ऑफिस में किस कर सकते हो, आयु ने आरव को देखकर मुंह बनाया। मैं नहीं आया था उसके पास, वही आई थी मेरे करीब, मैं उसे खुद से दूर करता उससे पहले तुम आ गई, आरव ने सफाई दी। आरव पहले भी उन दोनों के बीच की इस गलतफहमी को दूर करना चाहता था, लेकिन आयु की तबीयत खराब होने और फिर उसके अचानक लुधियाना चले जाने के बाद उसे बात करने का मौका ही नहीं मिला था। आज जब आयु ने जिक्र छेड़ा था तो आरव भी पीछे नहीं रहने वाला था। क्या तुम्हें मेरे बातें और उसके साथ मेरे बिहेवियर से पता नहीं चलता कि मैं उससे कितना इरिटेट होकर रहता हूँ? ओके, मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगा कि हम दोनों ने कभी एक दूसरे को हग या किस नहीं किया होगा, लेकिन उस दिन वही मेरे करीब आई थी। ट्रस्ट मी, हमारी शादी के बाद मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया, आरव ने आयु की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी।
शरीफ होने का ड्रामा मत करो, तुम दोनों साथ में एक घर में रहते थे तो कभी तो ये सब हुआ ही होगा। तुमने खुद एक्सेप्ट किया है कि तुम दोनों के बीच हग और किसेज एक्सचेंज होते थे, बाकी सब भी किया ही होगा, आयु ने कहा। आरव के साथ रहते हुए वो थोड़ा कंफर्टेबल हो गई थी तो उसे किसी भी तरह का सवाल पूछ लेती थी। तुम्हारे बीवियों वाले सवाल फिर शुरू हो गए। अच्छा ठीक है यार, एक घर में रहते थे तो इतना तो चलता ही था। ऊपर से मैंने उससे शादी करने का सोचा था तो खुद को थोड़ा कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था। तुम और मंथन भी तो एक घर में रहते थे, मैंने तो कभी नहीं पूछा तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है या क्या नहीं। याद है जिस दिन फोटोशूट हो रहा था तो तुम दोनों बीच में आकर एक दूसरे से प्यार जताने में बिजी थे? कितना करीब था मंथन तुम्हारे, इतना टाइटली कौन हग करता है, आरव चिढ़कर बोला। वो भले ही जताए ना, लेकिन उसे आयु को मंथन के साथ देखकर जलन होती थी। तुम्हें जलन हो रही है, आयु ने उसे घूरते हुए पूछा। ओ हेलो, मैं क्यों जलूंगा, ठीक है एक्स सबकी लाइफ में होते हैं, लेकिन हमें प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए, आरव ने सफाई दी और फिर आयु को खींचकर उसे हग कर लिया था। उसने कहा, क्या हुआ, जो पास्ट में मंथन ने तुम्हें गले लगा रखा था, प्रेजेंट में तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ है, इतना टाइटली चलेगा? आयु को परेशान करने का मौका मिला था तो आरव कहाँ पीछे हटने वाला था। आयु उसके सीने पर मारने लगी ताकि आरव उसे छोड़ दे, उल्टा आरव ने उसे और भी टाइटली पकड़ लिया था। छोड़ो मुझे ठरकी खुराना, जब देखो बार बार चिपकते रहते हो, मैं नहीं रहने वाली तुम्हारे साथ एक घर में, आयु गुस्से में बोली। जैसे ही आयु ने जाने की बात की, आरव ने जल्दी से उसे छोड़ दिया था। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, चलो ब्रेकफास्ट टेबल पर मिलते हैं, मुझे अच्छा सा ब्रेकफास्ट खाते हुए तुम्हारी और मंथन की लव स्टोरी भी तो सुननी है, आयु ने मुंह बनाकर कहा। हमारी कोई लव स्टोरी नहीं है, मंथन और मैं एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, मुझे मंथन के साथ काफ़ी कम्फर्टेबल फील होता है, आरव ने हंसकर कहा। मैंने लव स्टोरी पूछी है, ना कि ये पूछा है कि तुम्हें उसके साथ कैसा महसूस होता है। ऐसे तो मैं अपने ड्राइवर के साथ भी कंफर्टेबल हूँ, तो क्या उससे शादी कर लूँ? जानबूझकर तंग कर रहे हो मुझे, आयु से घूरते हुए बोली। कंफर्टेबल लगता है इसका मतलब वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे शख्स अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होते हैं, बस यही सोचकर जब उसने मुझे प्रपोज़ किया तो मैंने भी हाँ बोल दिया। वो कहते हैं ना कि प्यार दोस्ती है, और मुझे उसके साथ एक अलग ही सुकून महसूस होता है, मैं वो सुकून जिंदगी भर महसूस करना चाहती हूँ, बस यही है हमारी लव स्टोरी। जैसे ही आयु की बात पूरी हुई, आरव जोर जोर से हंसने लगा। आयु ने उसके हाथ पर मारा और बोली, तुम डिसाइड कर लो, या तो अपने खड़ूस वाले अवतार में रहा करो या फिर एंजल वाले में, अब इसमें हंसने जैसा कुछ नहीं है। आरव के हंसने और चेहरा देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि आयु की कहानी सुनने के बाद वो उसका मजाक उड़ा रहा है। आरव ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, मिसेस खुराना, इसमें हंसने के अलावा और कुछ नहीं है, लगता है बॉलीवुड मूवीज़ को अच्छे से फॉलो करती हो। किसने कहा है कि प्यार दोस्ती है, रानी मुखर्जी ने? हाँ दोस्ती में प्यार हो सकता है, लेकिन प्यार कभी दोस्ती नहीं हो सकती, लगता है कुछ कुछ होता है तुमने कुछ ज़्यादा ही बार देख ली, तभी तुम्हारे लिए प्यार दोस्ती है। हाँ वो मेरी फेवरेट मूवी है और मेरे लिए प्यार दोस्ती है, आपका फ्रेंड आपको कभी हर्ट नहीं कर सकता, तो आप उसके साथ आराम से पूरी जिंदगी बिता सकते हो। तुम्हारे लिए प्यार क्या है, आयू ने सीरियस अंदाज में पूछा। अब तक आरफ कभी प्यार और शादी जैसे रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं था, और वो ये बात खुलकर कहता भी था। आयू जानना चाहती थी कि आखिर आरफ के मन में प्यार जैसी फीलिंग्स को लेकर क्या ख्याल है। आरफ ने हल्का मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए प्यार दोस्ती तो बिल्कुल नहीं है मिसेस खुराना। दोस्ती में एक अलग ही सुकून होता है जो तुम्हें मंथन के साथ महसूस होता है, जबकि प्यार सुकून का नहीं जुनून का नाम है। एक ऐसा जुनून कि आप अपने प्यार के बिना रह ही ना पाओ। आपको कुछ समझ नहीं आए कि क्या सही है और क्या गलत। आपके लिए आपका प्यार ही सब कुछ हो और उसे हासिल करना एकमात्र मकसद। बोलते हुए आरफ बेहद इंटेंसिटी से आयू को देख रहा था। आयू ने गहरी सांस ली और तुरंत ना में सिर हिला दिया। मैं इस बात से अग्री नहीं करती हूँ। लोग ये बोलकर काफी हद तक सामने वाले के साथ गलत कर जाते हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। तुम्हारा जुनून वाला प्यार सामने वाले के लिए खतरा भी बन सकता है। मैं कोई गलत कदम उठाने का नहीं बोल रहा और ना ही सामने वाले के साथ कुछ गलत करने को बोल रहा हूँ। यहाँ बात फीलिंग की चल रही है। तुमने कहा कि प्यार सुकून है, लेकिन मेरे लिए प्यार जुनून है। एक ऐसा जुनून कि आप अपने प्यार में सामने वाले के लिए कुछ भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि वो कुछ भी हमेशा गलत ही हो। आपको बस उसकी खुशी चाहिए होती है, चाहे इसके लिए खुद को तड़पना ही क्यों ना पड़े, आरफ ने जवाब दिया। क्या तुम्हें कभी किसी के साथ सुकून महसूस नहीं होता, अचानक आयू ने पूछा। और मैं पूछूं कि क्या तुम्हें किसी के साथ ये फीलिंग नहीं आई कि अगर ये मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा तो मेरी ज़िंदगी का आने वाला हर एक लम्हा बिताना मुश्किल हो जाएगा। अपनी आंखें बंद करो आयू और सोचो वो कौन सा इंसान है जो तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रहा तो तुम नहीं रहोगी। अलग होने का एहसास ही तुम्हें अंदर से मार दे, आरफ बोला। तुम पागल हो और ये मुझे नहीं करना, तुम चाहो तो कर सकते हो, आयू ने नामे सिर हिला दिया था। आयू के कहने पर आरव ने अपनी आंखें बंद की तो उसे सामने आयू का ही चेहरा दिखाई दिया। उस एक पल में उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। आरव ने जल्दी से अपनी आंखें खोल ली। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। आयू उसे अच्छी लगती थी, पर आरव उसे मंथन से अलग करके उनके बीच में नहीं आना चाहता था। वो खुद जानता था कि अगर उसे आयू से शिद्दत वाला प्यार हो गया तो वो सही गलत का फर्क तक भूल जाएगा। और आज जब आरव ने अपनी आंखें बंद की और आयू को अपने सामने देखा तो वो समझ गया था। जिस फीलिंग से आरव अब तक भाग रहा था, जाकर बंद करके जब उसके सामने आयू का चेहरा आया तो वो क्लियर हो गया था कि अब आयू के बिना रहना उसके लिए मुश्किल होगा।